नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में खान हसनीन आकिब साहब, जो के जीएन आज़ाद कॉलेज पुसद में प्रोफेसर हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाने का उनको बड़ा अनुभव है। प्रोफेसर साहब केवल उर्दू पढ़ाते नहीं, उर्दू साहित्य में उनकी बड़ी रुचि है। वो कविताएं भी करते हैं, साहित्यिक है और समीक्षा में भी अपना हाथ आजमाते हैं। आकिब साहब ने बहुत से किताबें लिखी है, अनेक कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार में उन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया हुआ है और लोगों की तारीफ हासिल की हुई है। आज हम अपना जो URD 462 का जो कोर्स है, आगाही अरब अदब, आगाही अदब, और जिसमें के किताब है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि इसके पहले कार्यक्रम में हमने तरक्की पसंद अरबी के माने, उसमें कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट या कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, उनके बारे में जानकारी ली। और अब आगे चल के तरक्की पसंद अदबी में ऐसे कौन कौन से टाइप्स है या प्रकार है कि जो तरक्की पसंद का ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट आगे ले जा रहे हैं। तो मैं अभी सीधे आकिब सर से अपने बातचीत करवा देता हूं, ताकि आपको यह पता चले कि तरक्की पसंद अदबी तहरीक में कौन कौन सी शायरी है, अफसाने है, नॉवेल है, कि जिन्होंने एक अलग अपना अंदाज पेश किया हुआ है और जिनका मुख्य उद्देश्य है कि समाज की जो मनोधारणा है, जो मनोवृत्ति है, जिसे हम मेंटेलिटी कहते हैं, वो मेंटेलिटी इस तरह से उसको दोहरा जाए या इस तरह से उसको शेप दिया जाए कि जो व्यक्ति वो पढ़ता है, जो समाज वो पढ़ता है, उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाए और वो तरक्की की ओर बढ़ जाए। केवल खुद की तरक्की नहीं, बल्कि अपने साथ पूरे समाज की तरक्की, पूरे समाज के दृष्टिकोण में बदलाव, ये प्रमुख उद्देश्य तरक्की पसंद अदबी का रह चुका है। और इसके बारे में हम अभी अधिक जानकारी खान हसनीन आकिब सर से प्राप्त करेंगे। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप कृपया पूरा ध्यान देके ये कार्यक्रम सुने और देखें। नमस्कार सर।
नमस्ते सर।
सर, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में बात की कि तरक्की पसंद अदबी के क्या मायने हैं, तरक्की पसंद अदबी के क्या उद्देश्य रहे हैं, और जैसे कि आपने बहुत अच्छे कहा कि तरक्की पसंद अदबी तहरीक कभी खत्म नहीं होती। सर, जैसे कि हमने अफसाने का अभ्यास किया, शायरी का किया, अफसाने का भी किया
जी,
तो तरक्की पसंद जो अदबी है उसमें क्या ये चारों प्रकार से लिखा हुआ है या कुछ उसका अलग ढंग है?
देखिए, अदब जब तख्लीक हो रहा है तो अदब के रास्ता तो एक ही होता है, लेकिन अलग अलग गलियां उस तक पहुंचती हैं।
क्या बात,
आपको अपनी बात करनी है तो चाहे आप शायरी के जरिए करें, अफसानों के जरिए करें, ड्रामा लिखकर करें या नॉवेल लिखकर करें, बाहर सूरत बात तो पहुंच जाएगी। अदब भी ऐसा ही है, उसकी असनाफ, उसकी टाइप्स, शायरी, अफसाना वगैरह, ये सब उसकी टाइप्स हैं, ये फॉर्म्स हैं, उसकी शक्लें हैं। जो एक शख्स है वो आता है और अपनी बात मुख्तसर अंदाज में कहकर चला जाता है, एक आता है वो बहुत लंबा उसी बात को खूब खींच तान कर बयान करता है, तो छोटे इसमें दो जुमलों में, दो लाइंस में एक बात करके एक चला गया, वही बात उसने की जिसने एक घंटा उस पर तकरीर की, दोनों ने एक ही बात कही, निचोड़ निकला तो उतना ही, लेकिन जो उसने मुख्तसर अंदाज में कहा वो शायरी कहलाई, और फैलाकर जो कहा वो या तो अफसाना कहलाया या नॉवेल कहलाया। ये उसकी अदब की असनाफ होती हैं। तरक्की पसंद अदब का सरमाया, इन तरक्की पसंदों का अदबी सरमाया अगर हम इसका जायजा लें, तो एक अहम बात जो जानने वाली है कि ये पूरी तहरीक अगर हम इसके कयाम से 1936 से लेकर 1960 तक जाते हैं, 1936 से लेकर 1960 के दरमियान जो 25 बरस का अरसा गुजरा है, ये इनका अहम दौर था तरक्की पसंदों का, तरक्की पसंदों के उरूज का। हम ये कहेंगे कि तरक्की पसंद तहरीक अपने उरूज पर इन 25 बरसों में रही, 1936 में अपने आगाज से लेकर, तो ये 25 साल जाकर पूरे होते हैं 1960 में, यहां तक ये चली। फिर एक दूसरा रुझान पैदा हो गया, हम उस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम इसको देखते हैं। तो तरक्की पसंद अदबी सरमाया इन 25 वर्षों में जो कुछ भी जमा हुआ, चाहे तरक्की पसंद शायरी रही हो, चाहे तरक्की पसंद अफसाने रहे हों, चाहे तरक्की पसंद नॉवेल रहे हों, चाहे तरक्की पसंद दीगर असनाफ रही हों, ड्रामे रहे हों, या फिर तरक्की हिंदुस्तान से बाहर के तरक्की पसंदों ने जो कुछ भी लिखा, उनके उनकी तहरीरों के तराजिम रहे हों, ट्रांसलेशंस रहे हों, ये सब इन 25 वर्षों में जमा हो गया। लेकिन 25 वर्षों में क्या जितना कुछ जमा हो गया था वो सबका सब सोना था? एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो हर चीज जो तरक्की पसंद तहरीर के, तरक्की पसंद अदब के जुमरे में उसके नाम से जो आई, हर चीज सोना तो नहीं थी, कुछ शोर शराबा था, कुछ नारेबाजी थी, कुछ हुल्लड़बाजी थी, जो कुछ भी कहा कि नहीं शायर थे, कुछ शायरों ने नीरे नाम नारेबाजी की कि चलो इनकलाब लाएं, चलो हम दौड़ें, चलो हम, उसके बाद कहाँ हैं जब वो जरूरतें खत्म हो गई, फिर वो इनकलाब कोई जरूरत ही नहीं रही इनकलाब की, तो फिर वो तरक्की पसंद तहरीरें, वो अदब कहाँ चला गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई तहरीक किसी नजरिए के साथ शुरू होती है तो उस नजरिए की जितनी उम्र होती है उस नजरिए पर लिखे गए अदब की उम्र भी उतनी ही होती है। जब वो नजरिया धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है तो फिर वो उसके पैमाने भी बदलते चले जाते हैं। तो तरक्की पसंदों ने भी जो कुछ भी अदबी सरमाया, जो कुछ भी उन्होंने जमा किया, जो कुछ उन्होंने लिखा शायरी में, जो कुछ लिखा, ये सब तो ये इसकी अपनी सबका सब उसको अगर छान कर निकाला जाए तो समझ में आ जाता है। जैसे मैंने एक वक्त एक शेर कहा था कि अगर कचरा दिखाई दे तो पानी छान लेते हैं, जो आला जर्फ होते हैं वो गलती मान लेते हैं।
क्या?
तो वो जो कचरा छानने वाली बात है, जिसको हम अंग्रेजी में एक लफ्ज है स्क्रूटिनी, है ना, ये छानने का वो है कि पहले पूरा उसको पूरा एक निथार दिया जाए। तो ये सब तरक्की पसंद अदबी सरमाए का भी ऐसा ही हाल है कि अभी हम जो देखने वाले हैं आगे, तो वो यही देखेंगे कि सारा का सारा अदबी सरमाया तरक्की पसंदों का जो भी उन्होंने लिखा, तो उसमें से कितना हमारे पैमाने पर उतरा, कि जो वाकईतन बहुत मेयारी अदब, स्टैंडर्ड लिटरेचर वो कहा जा सकता है।
सर, जैसे कि शायरी का जो रिश्ता है वो दिल की दुनिया से है,
जी,
मोहब्बत से, प्यार से,
बहुत,
और तरक्की पसंद अदबी में क्या शायरी ने ये रिश्ता तोड़ दिया और वास्तविकता में आ गई, ऐसा कुछ हुआ है क्या? और जो शायरी के अंदर जैसे कि हिंदुस्तान ग्रुप है,
जी,
या सलाम मछली शायरी, तो इसके बारे में हमने सुना तो है लेकिन कुछ जानते नहीं इसके बारे में, तो वो जरा बताइए कि शायरी का रिश्ता क्या रहा है, और ये जो जो मेजर उसके जो बड़े बड़े उसके
ग्रुप्स
जो नाम है ग्रुप्स है उसके बारे में जरा बताइए।
आपने सर जो बात पहले की है बहुत नाजुक बात की आपने कि शायरी का ताल्लुक दिल से है, जाहिर सी बात है कि जिसके पास दिल है साहबे दिल है तो वही शायरी करेगा, एक पहलवान शायरी नहीं कर सकता। फिर ये कि शायरी का ताल्लुक प्यार मोहब्बत जैसे बहुत ही पॉजिटिव जज्बात से है, शायरी में दुश्मनी नफरत वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो सिर्फ मोहब्बत और प्यार की बात करती है, आपसी भाईचारे की प्यार की बात करती है, यकजहती और इत्तेहाद की बात करती है, माशरे के सेहतमंद कायम की बात करती है, ये शायरी का रोल है, ये शायरी का काम है, उसका किरदार है ये। अब आपने आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि तरक्की पसंद शायरी ने क्या किरदार अदा किया। सर आप बहुत मुझे आप देख रहे थे कि मुझे आपके सवाल से कितनी खुशी हुई कि वाकई मैं जो बोलना चाह रहा था आपके सवाल ने मुझे वो क्लू दे दिया कि शायरी जो उससे तरक्की पसंद तहरीक के आने से पहले एक मखसूस तर्ज का सब जानते हैं। देखिए शायरी कैसी हो रही थी तब भी शायरी का जो मिजाज था कि जरा उनकी शोखी तो देखिए, लिए जुल्फे खमशुदा हाथ में मेरे पीछे आए दबे दबे मुझे सांप कह के डरा दिया।
क्या
तो ये शायरी ये इस तरह के जो ये लखनवी अंदाज शायरी का जो है कि जुबान के साथ उसमें मौजूद में कोई नयापन नहीं बस वही चला आ रहा है। तरक्की पसंद तहरीक ने शायरी को भी उस रास्ते से हटाया, एक नया रास्ता दिखाया,
नया रास्ता
कि ये मौजूद शायरी के हो सकते हैं, जो जिंदगी के मसाइल हैं वो तजर्बात हैं मुशाहदात हैं वो सब शायरी का हिस्सा हैं, मौजूद हैं शायरी के। शायरी फिर वहां आकर खड़ी हुई जहां से उसने एक चश्मा निकाल दिया, दूसरे चश्मे से जब देखा तो अरे यहां तो दुनिया ही नहीं है, यहां तो वो चीजें है ही नहीं जो हम अब तक पढ़ते आए अब तक सुनते आए थे, ये तो एक सारी मसाइल है, ये इंसानियत कहां है, ये तो सब जुल्म जबर तशद्दुद के नीचे दबे जा रहे हैं कुचले जा रहे हैं। फिर ये हुआ कि वो शायर जो अब तक महबूबा के दुपट्टे को थामना अपने इश्क की मेराज समझता था, उसका हासिल समझता था, वही शायर वही दुपट्टा थामे हुए है, ये नहीं कि उसने दुपट्टा छोड़ा हो लेकिन अब उसका चश्मा बदल गया देखने का, उसने कहा कि तेरे आंचल की ठंडी हवा आ जाए, अब हवा की बात नहीं कर रहा है, आंचल की बात तो कर रहा है लेकिन अब ठंडी हवा की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि तेरे माथे पे ये आंचल मजाज कह रहा है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत बहुत ही खूब है लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा होता। तो अब वो आंचल अब परचम बनाने के काम आ रहा है, कौन सा परचम, वही माशूका है, वही उसकी महबूबा है, वही उसका आंचल है लेकिन अब शायर उस आंचल से ठंडी हवा लेने का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ठंडी हवाएं तो कब की चली गई, कब की गुजर गई, अब ठंडी हवाएं लेने का वक्त नहीं रहा था, अब तो समाज के हर तबके को साथ में लेकर ये जिसको औरत कहकर पर्दे के पीछे रखा जाता था या जिसको कोई बेमसरफ चीज समझा जाता था उसने कहा कि नहीं अब तेरा ये आंचल अब इससे परचम बना ले, यानी वही जो तरक्की पसंद ख्यालात हैं वो तू भी अपना ले, यानी शायर अपनी महबूबा से ये चाहत कर रहा है कि वही ख्यालात तू भी अपना ले, क्योंकि इस तहरीक को सिर्फ मर्दों की नहीं औरतों की भी जरूरत है। तो शायरी यहां आई, फिर शायरी ने काम क्या लिया, शायरी ने मैंने जैसे कहा कि कैफी आजमी ने कहा कि उठ खड़े हो जाओ सोते रहने से काम नहीं चलेगा, कैफी आजमी ने कहा कि वही मैंने शेर कहा आपसे वो कैफी आजमी का शेर था कि एक तुम के चल के एक तुम के तुमको फिक्र नशेबो फराज है, एक हम के चल पड़े तो बाहर हाल चल पड़े, चल पड़िए उठिए, जोश ने कहा कि अब इनकलाब आया चाहता है, इनकलाब की तैयारी करो, इनकलाब जरूरी है। जोश ने कहा कि अब वो सब बातें नहीं चलेंगी जो तुम अब तक करते आए हो, अब जो जमाने के तकाजे हैं उनको पूरा करो। शायरी से अब जहन को सुलाने का काम मत करो, शायरी जो अब वो जहनी अय्याशी का काम नहीं है, शायरी अब एक माशरती जरूरत है। शायर अगर अब भी शराब पीकर अगर सोता रहे तो अब वो किसी काम का नहीं है। अब वो जैसे अफलातून ने रिपब्लिका में अलजमहूरी में कहा कि शायर को समाज से बाहर करो, तो ये वो शायर होगा। समाज अब बाहर भेजने की चीज नहीं है बल्कि वो काम में लाने की चीज है। शायर अब काम लाए, तो तरक्की पसंदों ने शायरी से वो काम लिया। मैं कुछ आपको, तरक्की पसंदों ने शायरी को कहां कहां इस्तेमाल किया, मैं उसको जैसे एक जंग और इनकलाब, जंग और इनकलाब। तो अब यहां से सरदार जाफरी ने कहा कि गम के सीने में खुशी की आग भरने दो हमें, गम के सीने में खुशी की आग भरने दो हमें, खून भरे परचम के नीचे रक्स करने दो हमें। अब इसमें क्या अलामत हैं? एक तो गम का सीना, यानी यह कि वो सीना जो हमारा सीना जो गम से भरा हुआ था, अब इसको खुशी की आग भरने दो। इसमें खुशी कह दिया, उसके साथ आग का जो एलिमेंट है, आग का अंसर, ये तीन चीजें एक लाइन में आ रही हैं कि गम, खुशी और आग। आग जो है, आग अलामत काहे की है? एक्टिविज्म की, खाली बैठे कि नहीं, वो जज्बात आ जाए, फिर उसका नतीजा खुशी। और आप खुशी हासिल कर सकते हैं गम को माइनस करके, ये चीजें। और फिर इसके रास्ते में क्या आएगा? तो इसके रास्ते में आएगी खून की नदी, यानी कुर्बानियों का मौसम आएगा, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। खून के साए में, उस साए में आपको खून भरे परचम के साए में। अब खून भरा परचम जो है, एक बात और बता दूं कि ये खून भरा परचम क्या है। खून का रंग होता है लाल। कम्युनिज्म ने जो परचम बनाया था उसका रंग भी था लाल, और आज भी लाल ही रंग है। तो इसमें कई माना निकल रहे हैं एक लफ्ज खून के आ जाने से, कि खून भरे परचम के नीचे रक्स करने दो हमें, यानी अब हम इस परचम के नीचे रक्स करेंगे, यानी या तो वो कम्युनिज्म का परचम होगा या फिर हमारे कुर्बानियों का वो परचम रहेगा कि हम उसके तले अपनी कुर्बानियां पेश करें। ये सारी चीजें। फिर अगर हम देखें कि मोइन एहसान जज्बी ने, मूड बदल रहा था ना उस जमाने में, वो सारी चीजें जिनकी जरूरत थी, वो मिजाज जो तरक्की पसंद शायर, तरक्की पसंद शायर चाहता था कि आवाम का ये मिजाज बने, तो फिर उसने उसके तहत शायरी की। फिर उसने कहा कि नहीं, अब जंग चाहिए, जंग हो रही है और होनी भी चाहिए। तो उसने जंग के लिए क्या कहा? उसने कहा कि जलजलो आओ, दहकते हुए लाओ आओ। मोइन एहसान जज्बी ने कहा अपनी नज्म में कि जलजलो आओ, दहकते हुए लाओ आओ, बिजलियों आओ, गरजदार घटाओ आओ। कितनी मुसीबतें आ सकती हैं, सब आने दो। कहा कि आंधियों आओ, जहन्नम की हवाओं आओ, आंधियों आओ, जहन्नम की हवाओं आओ, आओ ये कुर्रे नापाक भस्म कर डालें, आओ ये कुर्रे नापाक भस्म कर डालें, कासे दहर को मामूरे करम कर डालें। कि ये जो नापाक सरजमीन है, ये नापाक जो कुछ चल रहा है यहां पर, जुल्म और तशद्दुद और जबर का जो नाच चल रहा है, तो ऐसी ऐसी जमीन को, ऐसी जगह को खत्म कर, भस्म कर दें हम, और कासा दहर को मामूर करम कर डालें। ये दुनिया का ये जो हाथ है, जो कासा यानी जिसे मैं मांगा जाता है, मांगने का बर्तन, तो इसको करम से भर दिया जाए। तो ये शायरी उस वक्त वो उसका जो मिजाज बन रहा था शायरी का, वो ये मिजाज था उस वक्त। वो माजी के जो पिछला जो चल रहा था, और फिर ये नजरियात तो ऐसे नजरियात थे कि जिसमें जो भी आया उसने कुछ ना कुछ उसमें इजाफा किया, उसने नई बात लाई। फारसी में एक कहावत है कि हर के आमद इमारत नौ साख्त, जो भी आया उसने एक नई इमारत बनाई। तो ये नजरियात की इमारत थी, वो उसने भी नहीं, हर जो भी आया उसने उसमें कहते हैं कि भर्ती डालना, हर एक ने उसमें अपनी अपना
अपना
ऐड करता गया। तो ये शायरी, यहाँ पर अगर हम शायरी की, उस वक्त जो लोग जो शोरा थे तो मजाज लखनवी थे, असरारुल मजाज, और सलाम मछली शायरी, उसके बाद आपके अख्तर अंसारी थे, उसके बाद फिराक गोरखपुरी, आपने फिराक गोरखपुरी का नाम सुना है कि रघुपति साहेब फिराक। चलते चलते अगर मैं उनका जिक्र कर दूं, एक दो अशार उनके के जो मशहूर वो है, उनका कि तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। तो इस मिजाज की शायरी करने वाले फिराक गोरखपुरी भी तरक्की पसंदी की बात करने लगे, क्योंकि जरूरत थी, फिराक उससे अलग रह नहीं सकते थे। फिर उसके बाद आपके फैज अहमद फैज तो मशहूर है, तरक्की पसंद शायर की हैसियत ही से उनसे फुल टाइम तरक्की पसंद शायर थे फैज अहमद फैज, हाँ, फिर मजरू सुल्तानपुरी थे, फिर मखदूम मोहियुद्दीन थे, फिर उसके बाद आपके सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, जानिसार अख्तर ये जावेद अख्तर जो है इनके वालिद, शबाना आजमी के ससुर, ये जानिसार अख्तर, फिर उसके बाद साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी का एक दौर रहा है, वो तरक्की पसंदी के, तरक्की पसंद शायरी के अहम बड़ी पहली वालिद सफ में शामिल थे। ये उनका एक बड़ा मशहूर गीत है जिसका ये है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।
सही बात है।
ये एक मैसेज दिया कि क्या किया जाए। अहमद नदीम कासमी हैं, परवेज शाहिदी हैं, जहीर काश्मीरी हैं। अच्छा, एक चीज, ये जितने मैंने नाम लिए हैं इनको हिंदुस्तान ग्रुप कहा जाता है। हिंदुस्तान ग्रुप इसलिए कहा जाता है कि ये वो लोग थे जिनकी नज़में, जिनकी शायरी, लखनऊ से एक अखबार निकलता था जिसका नाम था हिंदुस्तान, हफ्त रोजा वीकली अखबार निकलता था हयातुल्ला अंसारी की इदारत में, हयातुल्ला अंसारी का अखबार था वो अखबार निकालते थे, और उस वो अखबार तरक्की पसंदों का ऑर्गन था, मौत ऑर्गन था, तो उसमें इनकी तख्लीका शाये होती थी, इसलिए वो हिंदुस्तान में जितने शोरा का कलाम शाये होता था उनका एक बंडल बनाकर अलग किया गया, उसको ग्रुप कहा गया ग्रुप। और वो हिंदुस्तान ग्रुप कहलाया। तो ये एक मतलब ये तहरीक जो है तरक्की पसंद तहरीक बहुत अलग अलग इससे गुजरी है, ये इसके अपने तजुर्बात हैं इसके।
सर, अपने शायरी के बारे में बताया, जिस तरह शायरों ने खुद को भी बदला और उनके शायरी में भी बदलाव गया, क्या उसी तरह का बदलाव अफसानों में भी आ गया है, या तरक्की पसंद की विचारधारा से अफसाने हट गए हैं क्योंकि उनका दर्द से ज़्यादा रिश्ता है, दर्द को ही वो अहमियत देते हैं, और तरक्की पसंद ये जो फॉर्म है ये उनको स्वीकार नहीं है, ऐसा कुछ है क्या कि अफसाना के बारे में जरा बताइए तरक्की पसंद।
देखिए, तरक्की पसंद अफसाना, तरक्की पसंद शायरी जब जिस वक्त में जो काम कर रही थी तो वही काम तरक्की पसंद अफसाना अपने इसमें कर रहा था।
अच्छा,
तरक्की पसंद अफसाने के उस वक्त जो मेन अवलीन सफ में, जो पहली सफ में जो लोग थे, उसमें इस्मत चुगताई, उसमें खुद सज्जाद जहीर भी थे, उसमें रशीद जहां थी, उसके बाद उसमें प्रेमचंद सबसे बड़ा नाम, प्रेमचंद तो उससे पहले से, जब तरक्की पसंद तहरीक वजूद में आई उससे पहले से प्रेमचंद तो अफसाने लिख रहे थे, कहानी लिख रहे थे, और यूं भी उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में प्रेमचंद का नाम आता है। ये बिल्कुल सर्टिफाइड बात है कि उर्दू के वेरी फर्स्ट अगर कोई फिक्शन राइटर हैं, सबसे अव्वलीन अफसाना निगार प्रेमचंद को माना जाता है। तो 1903-1904 से लिखते हैं, मतलब तो ये अफसाना निगार, उसमें फिर कृष्णचंद्र हैं, सादत हसन मिंटू हैं, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, उसके बाद अख्तर अंसारी, अहमद नदीम कासमी, बलवंत सिंह, ये सब, राजेंद्र सिंह बेदी ये नाम लिए मैंने, तो तो ये सब लोग तरक्की पसंदी से जुड़े हुए थे, तरक्की पसंद तहरीक से, तरक्की पसंद नजरियात से जुड़े हुए थे। इनके अफसाने तरक्की पसंदी के नहज पर लिखे। ये लोग असल में इसलिए भी मशहूर रहे कि इन्होंने सबसे पहले एक ग्रुप, अंगारे ग्रुप आया। तो ये अंगारे ग्रुप क्या था? जिस तरह से हमने देखा कि शायरी में हिंदुस्तान ग्रुप था, ऐसे ही अफसानों में अंगारे ग्रुप, यानी तीन लोगों का, चार लोगों का एक ग्रुप था। ये महमूद जफर थे, डॉक्टर अशरफ थे, सज्जाद जहीर, अहमद अली, रशीद जहां। इन लोगों ने एक अफसाने लिखे, इन लोगों ने, और एंथोलॉजी जिसको कहते हैं, वो एक एंथोलॉजी बनाई। ये तीन चार लोगों के अफसाने उसमें शामिल रहे, और उस एंथोलॉजी यानी उस किताब का नाम था अंगारे। और उस किताब में जितने लोगों के अफसाने शामिल थे, अंगारे ग्रुप, वो अंगारे ग्रुप के अफसाना निगार कहलाए। अब अंगारा ग्रुप, ये तकरीबन 1935 के आसपास की लगभग बात है जब ये किताब शाये हुई, अंगारे किताब। आज हमारे बीए फाइनल ईयर के सिलेबस में, निसाब में शामिल है ये अंगारे ग्रुप। तो ये क्यों शामिल है, क्यों इतना अहम, क्या था इसमें?
बराबर,
ये इतना अहम अंगारे ग्रुप इसलिए था कि ये अंगारे जो किताब शाये हुई, शाये होते से ही अंग्रेज उसको बैन लग गया। और आपने देखा है कि जो जिस चीज पर बैन लग जाता है तो वो उसकी और शोहरत हो जाती है उसकी। हमने देखा है कि अभी बहुत सारी फिल्में जो है वो कुछ भी, प्रोड्यूसर खुद जाकर एक आदमी को खड़ा करता है कि जा कोर्ट में केस कर दे वो उस पर बैन लगाने के लिए, और वो लोग देखना चाहते हैं। तजस्सुस पैदा हो जाता है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या। तो वैसे ही अंगारे ग्रुप एकदम बैन हो गया। उसकी वजह यह थी कि उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की, अंग्रेज हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ लिखा हुआ था, तो इसलिए उन्होंने उसको बैन कर दिया। लेकिन जैसे ही वो बैन हुआ, वैसे ही उसके बारे में लोगों में क्या है, क्या
जानकारी,
उसको जानकारी, उसकी मालूमात हासिल करने की, तो फिर उसके ऊपर लोग टूट पड़े और ये बहुत फेमस हो गया, मशहूर हो गया ये अंगारे ग्रुप। उस वक्त में जो लोग लिख रहे थे उसमें इस्मत चुगताई का नाम लेते हैं हम, इसलिए कि सबसे उर्दू की अगर कंट्रोवर्शियल कोई अगर लेडी खातून अफसाना निगार होगी, कंट्रोवर्शियल, मुतनाज़ा, तनाज़ा क्या था कि जो मौजूआत उन्होंने अफसानों के लिए अपने चुने, वो मौजूआत ऐसे मौजूआत थे कि उस वक्त तक उर्दू पढ़ने वालों ने, उनके घरों में वो मौजूआत नहीं पहुंचे थे। वो मौजूआत तो जिंदगी का हिस्सा जरूर थे लेकिन आम गुफ्तगू का हिस्सा नहीं थे, उसको टेबल टॉक नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे अगर हम सेक्स की बात लें, जिंसियात की बात लें, तो जिंसियात आज एक आम डिस्कशन का मौजू है, उस वक्त नहीं था।
उस वक्त नहीं था, सही बात है।
यानी उसके बारे में तो सोचना भी गुनाह समझा जाता था। तो ऐसे वक्त में अगर इस्मत चुगताई जैसी खातून अफसाना निगार लिहाफ जैसा अफसाना लिख लेती है जिसमें बहुत उस जिंसियात की बहुत बारीकियां थी, तो जाहिर सी बात है कि उसको,
सही बात,
बिल्कुल लीक से हटकर उसने काम किया, तो उस पर बहुत इताब नाजिल हुआ। बहुत उन्होंने कहा कि भाई ये सब, ये क्या बदतमीजी है, क्या? फिर उस पर मुकदमे चले, मिंटू ने लिखा, सादात हसन मिंटू ने, उन पर मुकदमे चले, खोल दो उनका अफसाना है, और हिंदुस्तान की आजादी, बहुत सारे उन्होंने आजादी के पहले भी जो बहुत सारे अफसाने लिखे मिंटू ने, बहुत सारी चीजें कि ये एक नई तर्ज फिक्र, नई विचारधारा थी,
सही बात,
तरक्की पसंदी की, कि जिसमें उन लोगों को ये लगता था कि ये मौजूद अब तक आम लोगों से छुपे हुए क्यों है,
क्यों
क्या ये उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है? तो जो चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा है वो उस पर बात क्यों नहीं करते आप?
नहीं करते, सही बात।
ये उनकी फिक्र थी,
बराबर,
इससे पहले लोगों की फिक्र नहीं थी,
नहीं थी, सही बात।
फिर उसकी वजह भी ये है कि उसकी उस वक्त की कदरें, जो वैल्यूज हैं, वो उनकी उस वक्त का वो मामला था। तो ये सब अफसाना निगारों ने भी अपना अपना किरदार अंजाम दिया उसमें। मिंटू ने कहा, राजेंद्र सिंह बेदी की आप देखिए, बलवंत सिंह के अफसाने देखिए, इनके अगर हम पढ़ेंगे, और प्रेमचंद तो प्रेमचंद है, फिर तरक्की पसंदी के जैसे वो उर्दू अफसाना निगार निगारों की सफ में अव्वलिन है, ऐसे ही वो तरक्की पसंदी में भी सबसे अव्वलिन इसमें है। तो ये सब एक ग्रुप अफसाना निगारी में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, और ये जितने नाम हैं इनके साथ साथ और दीगर नाम हैं, अगर हमारे तलबा हमारे स्टूडेंट्स अगर बीएस फाइनल थर्ड ईयर के अगर स्टूडेंट्स इसके अलावा तरक्की पसंद अफसाना निगार कौन कौन से थे और उन्होंने कौन सी किताब मतलब कौन से अफसाने लिखे हैं, तो अफसाना तो हमारी ज़िंदगी के मौजूदात को डील करता है। अफसाने वो होते हैं कि जो एक मौजू को उठाता है और वो अपने अंदाज में अपने या तो अफसाना निगार भी अपने तजुर्बात बयान करता है या फिर अपने मुशाहदात बयान करता है, तो वो हमारी ज़िंदगी से कितने जुड़े हुए हैं। तो अदब पढ़ने का आप अपने अंदर शौक जौक पैदा कीजिए,
जरूर कीजिए।
ज़रूरत इस बात की है कि जब हम बीए कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके अदब को, क्योंकि अदब ज़िंदगी से अलग तो हो नहीं सकता, तो अगर जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है तो उसको पढ़ना चाहिए हमने कि क्या
सही बात
हो रहा है।
सर, जैसे कि आपने कहा कि शायरी और अफसानों में तरक्की पसंद अदबी से बहुत बदलाव आए, लेकिन एक सवाल मन में उठता है कि शायरी का जो अपना खुद का ढांचा है, जो खूबसूरती है
जी,
और अफसानों के भी अपना एक अलग अंदाज है, उस अंदाज पर उस खूबसूरती पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उनका जो मूलतः जो सौंदर्य है
जी
या जो खूबसूरती है वो निकल गई, किसके कारण? तरक्की पसंद अप्रोच के कारण। ऐसा कुछ हुआ है क्या?
देखिए, तरक्की पसंद जुबान की शायरी और अफसाना निगारी में, यानी अदब से अगर हम ये मानकर चलते हैं कि तरक्की पसंद नज़रियात की वजह से उर्दू अदब की मुख्तलिफ असनाफ यानी शायरी अफसाना इनसे इसकी रूह और ख़ूबसूरती निकल गई, ऐसा तो नहीं हुआ। किसी हद तक ऐसा हुआ है, लेकिन अदब ने उसको कबूल नहीं किया।
अच्छा, लेकिन उसको कुछ असर हुआ है,
कुछ हुआ है कि जिसमें उसकी जो बुनियादी बातें थीं, जैसे शायरी है तो शायरी को बाजू में रखकर पैगाम को पहले, मतलब प्रोपेगेंडा को उसमें पहले रखा गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि शायरी नारेबाजी बन गई, वो शायरी नहीं रही। तो ऐसी नारेबाजी को जो बहुत अदब ने उसको रखा नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, उसको कहा कि चाहिए ये कोई बिलो स्टैंडर्ड है, ये
जो तनकीद हुई,
हाँ जो तनकीद हुई उन्होंने उसको सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया, कहा कि साहब ये क्या चीज है, चलो बाहर। क्योंकि देखिए, शायरी हो या अफसाने, देर तक तो वही टिकेंगे जो वाकयतन जिनका ड्यूरेबिलिटी, जिनकी पायदारी, कि हाँ 50 साल पहले 100 साल पहले के आदमी को भी वो लगा कि नहीं ये मेरे कंसर्निंग चीज है,
सही बात,
सरोकार की चीज है, और 100 साल के बाद जो आदमी पढ़ रहा है उसको भी लग रहा है कि नहीं ये मेरे सरोकार की चीज है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिखते हैं
जी,
शायरी लिखने वाले, अफसाने लिखने वाले जो निगार है, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसका जो मूल ढांचा है, जो मूल खूबसूरती है, उसको ज्यादा ठेस ना पहुंचे।
हाँ,
भले आप
हाँ,
कौन सा भी अप्रोच अपना लो,
बिल्कुल बिल्कुल,
लेकिन उसका जो मूल ढांचा जो है, जो फाउंडेशन,
इन आपगिनों को ठेस ना लग जाएगा।
हाँ, तो इसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर है, ऐसा आपको लगता है?
बिल्कुल, इन लोगों, शायरों पर, अदीबों पर, अफसाना निगारों पर, जिस भी सिंफ में ये लोग काम कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी तो ये है कि जिस शोबे में, शायरी का शोबा हो या अफसाना निगारी का या नावल निगारी का, जिसमें ये काम कर रहे हैं, तो उसमें उसका असल जो तासुर है, जो इफेक्ट है,
इफेक्ट
वो ख़त्म नहीं होना चाहिए।
सही बात।
ठीक है, नए, मैंने परसों भी, कल के किसी प्रीवियस इसमें मैंने शेर कहा, तो वो तरक्की पसंदी के आज का शेर है, लेकिन फिर भी देखिए उसकी, कि उसने शेर के हुस्न को खराब नहीं किया।
खराब नहीं, वही मैं कहना चाहूँ
कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। ये शेर कहाँ, शेर है, दमदार शेर है, शायरी है, लेकिन वो मौजूआत नहीं है, और जुबान की और शायरी की खूबसूरती भी मुतासर नहीं हुई,
उसका जो अदब है वो कायम,
वो कायम है,
कायम।
तो ये जो है अदब, इसका काम है अदीबों का, मुसन्निफीन का, और अफसाना निगारों का, शायरों का, कि वो इस बात का ख्याल रखें कि किसी बहुत ज्यादा जोश में आकर उसकी शायरी की या अफसानों की मिट्टी पलीद ना करें।
हाँ, सही बात
है ना, कि था 4 मील पर मेरे महबूब का मकान, जोश ज्यादा होता है ना,
था तो
चार मील पर मेरे महबूब का मकान, 10 मील में निकल गया जोरे शबाब में।
क्या
तो जाना 4 मील है और जोर में 10 मील निकल जा रहे, तो मंजिल तक थोड़ी पहुंचेंगे, मंजिल तो 4 ही किलोमीटर पे है, 4 ही मील पर है। तो ये है कि जो तरक्की पसंदों ने जो खराब अदब तख्लीक किया था, खराब शायरी, खराब अफसाने, खराब नावल, तो ये सब जो है वो एक फूंक से उड़ गए, खत्म हो गए, क्योंकि वो ज्यादा वो सिर्फ नारेबाजी थी, है ना। अब वो उनका जोश था, लेकिन उनके जोश ने उसको मुतासिर किया, उसकी खूबसूरती को।
तनकीद वालों ने अपना काम अच्छी तरह से निभाया, सही बात है। सर अभी अफसाना और शायरी के बाद हम आते हैं नावल की तरफ।
जी जी जी।
और जब नावल का जो इम्पैक्ट रहता है, एक तो वो बहुत बड़ा रहता है, उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा रहता है, उसका जो प्लॉट है, उसके जो कैरेक्टर्स है, तो तरक्की पसंद नावल में ऐसे कौन कौन से बड़े बड़े नाम है, लेखक कौन से, निगार कौन से, और क्या इन नावलों में समाज को ऐसी कौन सी दिशा देने का प्रयास किया है कि जिसके कारण समाज के मनोवृत्ति पर, उसके मेंटेलिटी पर अच्छे से असर पड़े।
देखिए, नॉवेल जो है वो अफसाने की एक्सटेंडेड फॉर्म है। अफसाने को अगर आप फैलाते चले जाएं तो नॉवेल बन जाएगा,
नॉवेल बन जाता।
नॉवेल को आप कॉम्पैक्ट करते 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 लाएं तो अफसाना बन जाएगा। अब इसके बाद जो टेक्निकल उसमें पहलू आते हैं,
बराबर,
के उसमें प्लॉट क्या होता है, उसके बाद उसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, किरदार कितने आते हैं, फिर उसके बाद उसमें फ्रेम्स कितने आते हैं, उसके बाद थीम्स कितनी कितनी, तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे एपिसोड हमने देखा है कि टीवी सीरियल्स आते हैं, तो टीवी सीरियल हालांकि अगर देखा जाए हम तो वो जो 100 एपिसोड का एक सीरियल आता है, तो पूरे 100 एपिसोड को एक साथ जमा करके अगर हम उसको बोलने बैठो तो एक पेज पे पूरी स्टोरी आ जाती है।
सही बात है, सही।
लेकिन वो 100 सीरियल कब तक चलाते हैं,
सही बात।
हमारा कितना टाइम पास करते हैं। तो ऐसे ही अदब में इस सिंफ का भी है, लेकिन अदब में जब हम नावल की बात करते हैं तो हयातुल्ला अंसारी का एक नावल है, उसमें उस नॉवेल में उन्होंने जंगी आजादी की पूरी तारीख एक मुख्तलिफ किरदारों के हवाले से बयान की। तो उन्होंने आजादी हासिल करने के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए, उन्होंने अपने नॉवेल्स में ऐसे ऐसे किरदार चुने कि जिनको देखकर हिंदुस्तान के नौजवान, जिनको पढ़ पढ़कर उस किरदार जैसा बनना चाहते थे।
सही बात।
तो ये किरदार, ये इनका रोल था। तो इस्मत चुगताई ने जिद्दी, उसका नॉवेल्ट है, वो नॉवेलेट है, छोटा नॉवेल है। और उसके बाद आपके अजीज अहमद ने लिखा, आप ये जानते हैं रामानंद सागर, रामायण सीरियल जिन्होंने बनाया, वो उन्होंने भी नॉवेल लिखे उर्दू में। बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, आज का जो पाकिस्तान है,
सही,
जब एक ही था। मैं तो और ख्वाहिश करता हूँ कि वापस एक हो जाए।
सही बात।
तो ये हंसराज रहबर हैं, सज्जाद जहीर हैं, कृष्णचंद्र हैं, ये सब अफसाना नॉवेल निगार रहे हैं। एक चीज इसमें और एक आई है कि जिन लोगों ने अफसाने लिखे, तकरीबन उनमें की अक्सर तादाद, मतलब कसीर तादाद ने, वही लोग उन्होंने नावल में भी हाथ आजमाया। तो जाहिर सी बात है कि वो कामयाब अफसाना निगार थे, तो वो उसकी टेक्निक से वाकिफ थे,
वाकिफ थे, सही बात।
तो जब नावल लिखा तो उन्होंने वो, जाहिर सी बात है कि वही टेक्निक उसमें भी रखी, इसलिए वो नावल निगार की हैसियत से भी कामयाब रहे। तो इन नावल निगार जो थे, इन नावल निगारों ने उस वक्त के जो तरक्की पसंद नजरियात, तरक्की पसंद ख्यालात, ये सारे अपने नॉवेल्स में, क्योंकि नॉवेल्स की एक खास बात यह होती है कि उसको जितना चाहें आप फैला सकते हैं,
फैला सकते हैं,
है ना। ये तो एक ऐसा रबर होता है जिसको आप, होता इतना है लेकिन आप फैलाते चले जाते हैं, वो इतना जितना स्ट्रेच आप उसको स्ट्रेच कीजिए वो उतना चला जाएगा। तो उसमें गुंजाइश ये बनती है कि जब कहीं आपको लगा कि इसमें एक नया कैरेक्टर आना चाहिए, आपने डाल दिया, उसका एंट्री करवा दिया आपने कि सलाम अलैकुम, वो आ गया अंदर, फिर उससे आप जितनी देर तक चाहें आप उससे काम करवाते रहिए, डायलॉग्स बुलवाइए, मैसेज दीजिए, कुछ भी काम कीजिए। ये नॉवेल में गुंजाइश होती है, अफसाने में इसकी गुंजाइश कम होती है,
कम होती।
तो इसलिए इन्होंने नॉवेल से भी बहुत काम लिया।
सर जैसे कि आपने कहा कि नॉवेल को हम बढ़ा सकते हैं समाज की और अपनी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन मेरा मुझे ये मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन सी समस्या है जो तरक्की पसंद नॉवेल ने उठाई है और जिसके कारण कुछ बदलाव भी आज हम देख रहे हैं, ये नॉवेल का इम्पैक्ट जो है, ऐसी कौन सी समस्याएं जो आप बताना चाहेंगे कि जिन्होंने नॉवेल ने फुल जस्टिस दिया
जी,
उनका पूरा जिक्र किया, उसके बारे में लिखा और लोगों की ऐसी धारणा पैदा की कि इस तरह का नहीं होना चाहिए समाज में, इसके बारे में जरा बताइए।
देखिए, नॉवेल्स ने जो किरदार अदा किया है, नॉवेल्स ने अलग अलग मौजूआत उठाए हैं, खास तौर से जो मेरे मुताले में जो मौजूआत हैं नॉवेल्स के जरिए से, उसमें है देहाती जिंदगी का मंजरनामा कि हिंदुस्तान 70% से ज्यादा देहातों में बसता है। आज भी इसीलिए हमको पंचायत राज नाफिस करना पड़ा। आज भी हम देखते हैं, हमारे यहां तो नहीं है लेकिन शुमाली हिंद में, नॉर्थ में पंचायत खाप ये होती हैं, इनका अपना जुडिशियल सिस्टम होता है, अदालतें होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां उनका अपना एक, देहातों का अपना एक निजाम कायम रहेगा तो वहां उनकी अपनी कश्मकश भी रहेगी,
सही बात है,
उनका अपना स्ट्रगल भी रहेगा। दो जितना छोटा यूनिट रहेगा स्ट्रगल उतनी शदीद रहेगी, ये मेरा एक तजुर्बा भी है, मुशाहिदा मैं देखता हूं कि जितना छोटा यूनिट है उसमें उतना, जैसे एक एमपी के इलेक्शन में मैंने ये देखा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में इतनी दुश्मनियां नहीं होती जितनी ग्राम पंचायत के मेंबर के इलेक्शन में होती है क्योंकि समाज का सबसे छोटा यूनिट होता है, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी से एकदम लास्ट का यूनिट होता है और वहां पर फिर उनके अपनी समस्याएं होती हैं, वहां उनका उनके अपने मसाइल होते हैं, उनके अपने इस्तेहसाल होता है। यहां पर वो सरपंच जो लाइन में खड़ा होता है वो गांव का बादशाह होता है, तो ये सारे मामलात होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां का एक आम आदमी, उसके अपने मसाइल हैं, क्या क्या मसाइल हैं। अगर कोई, अगर किसी गांव का सरपंच ये कह दे कि भाई ये अब ये उसको गांव निकाला दिया गया तो दे दिया, कहा कि फिर कोई गांव उससे बात नहीं करेगा। शहरों में ऐसा नहीं होता है, आप कुछ भी कर लीजिए कुछ नहीं। तो ये सारे मसाइल, ये गांव के देहात के मसाइल। फिर उस वक्त जो चल रहा था आजादी के, तो वो आजादी के जो मुश्किलात पेश आई तो उसमें वो हालात पेश किए गए नावलों में। फिर समाज के बड़े शहरों के अंदर क्या मसाइल होते हैं, कुछ नॉवेल्स के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात का जिक्र आया है, सादात हसन मिंटू ने उसको बहुत अच्छे से डील किया। तो जो हालात पेश आते चले गए, तो ये तरक्की पसंद नॉवेल्स ने जो हिंदुस्तानी माशरा समाज जिन मसाइल से जूझ रहा था, उन नॉवेल्स में उन मसाइल को बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल करके, बहुत अच्छे तरीके से उसको उसमें अपने अब नॉवेल्स में वाकयात को, और उसके साथ ही साथ, मतलब जैसे मैंने उस दिन कहा कि तशखीस भी की, डायग्नोसिस भी किया और उसके बाद हल भी बताया कि अगर ऐसा हो तो अच्छा हो,
क्या करना है। सही बात है सर। नॉवेल के बाद हम आते हैं तरक्की पसंद ड्रामा, जो साहित्य का एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण टाइप या प्रकार है
जी।
तो ड्रामे के अंदर तरक्की पसंद किस तरह से आई और ऐसे कौन से ड्रामा है जिन्होंने इस तरक्की पसंद को बहुत अच्छी तरह से उठा लिया ये मुद्दा और अपने पात्रों के जरिए तरक्की पसंद का माहौल पैदा किया।
ड्रामा भी अदब की एक सिंफ है, एक उसकी किस्म है। ड्रामे की अपनी एक टेक्निक होती है। अफसाना निगार अफसाने में, नॉवेल निगार अपने नॉवेल में किरदारों से जो काम लेता है तो वो क्या करता है, बहुत सारी बातें बराह रास्त के किरदारों के, किरदारों को उंगली पकड़कर चलना पड़ता है क्योंकि वो बयान कर रहा है ना। अफसाने में तो राइटर बयान कर रहा है, नॉवेल में भी राइटर बयान कर रहा है, लेकिन ड्रामे में खासियत यह होती है कि जिसका डायलॉग है वो अपनी जुबान से बयान कर रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि बीच की जो सीनरी या ये वो जो सीन मंजर निगारी ये वो इस तरह के जो बयान और वो गैर जरूरी तफसीलात जो वो डाल देता है उसमें, वो सब छट जाती है
उसकी गुंजाइश।
और बराह रास्त सामने सामने के जो डायलॉग्स होते हैं कि ये बोल रहा है, ये कैरेक्टर, ये उसका डायलॉग, ये कैरेक्टर, ये उसका डायलॉग, तो आमने सामने का ये कम्युनिकेशन होता है, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, ये ड्रामा हम ऐसा समझ लेते हैं, तो ये अपना काम हो रहा है। तो वो चीजें जो एक कैरेक्टर बगैर किसी दूसरे जरिए के अपने कहना चाहता है वो फौरन ड्रामे के जरिए कह दिया जाता। तो उस वक्त जिन लोगों ने ड्रामे लिखे तो उनमें सज्जाद ज़हीर, उसमें चूंकि सज्जाद ज़हीर खुद तरक्की पसंद तहरीक के इमाम थे, बानी थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि हर सिंफ में हाथ दिखाया, शायरी भी की, उन्होंने अफसाने भी लिखे, नॉवेल निगारी भी की, ड्रामे भी लिखे, यानी जिस जिस में उनको लगा कि मैं ये सब कर सकता हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, इसलिए वो हर इसमें शामिल रहे। और फिर उनके साथ जो लोग थे, क्योंकि कमिटमेंट बात आती है ना, जब एक कॉज की बात आती है, एक नजरिए की बात आती है, तो उसमें एक लफ्ज आता है कमिटमेंट।
सही बात,
ये लोग कमिटेड लोग थे,
कमिटेड, सही बात,
अपने नजरिए के लिए, जो कम्युनिज्म का नजरिया था, इश्तराकियत का। तो इसमें कृष्णचंद्र ने ड्रामे भी लिखे उस वक्त, क्या तरक्की पर, हालांकि ये फुल टाइम ड्रामा निगार नहीं थे, इन्होंने सिर्फ जैसे कृष्णचंद्र की अगर हम बात करें तो ये फुल टाइम अफसाना निगार थे, लेकिन इन्होंने ड्रामे भी लिखे। और चूंकि उस वक्त तरक्की पसंदों के दौर में जो ड्रामे लिखे गए, उनसे पहले ड्रामों के सिलसिले में नाम जो है आगा हश्र कश्मीरी का नाम आता है, वो उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर कहलाते हैं, उनको उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है आगा हश्र कश्मीरी को। तो लेकिन ये बात के दौर में वो तरक्की पसंद नहीं थे, उस वक्त नहीं थे वो,
बराबर
इस दौर में ये लोग थे। तो इन लोगों ने तरक्की पसंद दी, तरक्की पसंद नजरियात की जो क्षमा जलाई उसको लेकर चले, उसकी रोशनी घर घर पहुंचाई, तो इसके जरिए पहुंचाई। तो तरक्की पसंदों ने अपने नजरियात की तबलीग के लिए, उसकी तरसील के लिए ड्रामों से भी काम लिया। इसमें चुगताई ने ड्रामे लिखे, सादत हसन मिंटू ने ड्रामे लिखे, राजेंद्र सिंह बेदी ने नॉवेल भी लिखे, अफसाने भी लिखे, ड्रामे भी लिखे,
यानी फॉर्म कौन सा भी हो,
फॉर्म कोई भी हो,
उनका जो मुख्य उद्देश्य था
जी जी
वो तरक्की पसंद का जो विचार है वो समाज को देना था। क्या इसी तरह से तरक्की पसंद तजो मजा निगार जो रहते हैं
जी जी जी,
तो उनके इस बारे में क्या हाल थे?
तरक्की पसंद तंजो मिजा निगार, चूंकि तंजो मिजा जो है वो जिंदगी का ह्यूमर जिसे कहते हैं हम,
बराबर
है ना, वो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जिंदगी के दो रूप होते हैं, एक सुख और एक दुख। जब दुख होता है तो इंसान रोता है, जब सुख में होता है तो हंसता है, तो हंसी के फिर वो मुख्तलिफ बहाने ढूंढता है ना, रोने के लिए बहाने की जरूरत नहीं होती है, आदमी ढूंढता नहीं है रोने के बहाने, क्योंकि हर नेगेटिव चीज को आदमी ढूंढने नहीं जाता, वो खुद ही आ जाती है, लेकिन पॉजिटिव चीज को ढूंढना पड़ता है,
बराबर,
तो इसीलिए इतना आसान नहीं है। तो खुशी को भी ढूंढना पड़ता है, तो खुशी को ढूंढने के लिए आदमी बहाने तलाश करता है, जिसको ह्यूमर कहते हैं। जैसे आप आज के दौर में हम लोग, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, हम खुद भी आज टीवी पर कॉमेडी सीरियल्स देखते हैं, लाफ्टर चैलेंज देखते हैं, ये क्या है? ये सब कुछ नहीं, हम हंसना चाहते हैं, लेकिन हंसने का मतलब क्या है? हंसने का मतलब टाइम पास। तरक्की पसंद तहरीक के दौर में हंसने का मतलब टाइम पास नहीं था, सटायर जिसको कहते हैं, तंज,
सही बात है,
कि कोई पॉइंट उस पर
हंसते हंसते अपने जो
कोई किसी इस पर कटाक्ष, व्यंग, तंज,
सही बात,
कि आप हंसी की हंसी हो जाए और उस पर वो पॉइंट फोकस भी हो जाए,
क्या गलती है, क्या
हाँ है, उसके पॉइंट आउट हो जाता है वो,
सही बात है।
तो तंजो मिजा निगार में उस वक्त, जैसे एक मिसाल इसकी ये ले लीजिए कि अगर शायर पर तंज करना है तो शायर पर एक मजमून लिख दिया आपने या शायरी लिख दी। देखिए तंजो मिजा कैसे होता है, कि तंजो मिजा की बात कर रहा हूं कि बीवी फरार हो गई खिड़की से कूद कर, मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया। तो ये है कि शहर की हालत ये है कि वो इसमें क्या तंज है, व्यंग क्या है इसमें, व्यंग ये है, तंज ये है कि शायर अपने आप से इतना बेगाना हो जाता है कि फैमिली का उसको ख्याल ही नहीं रहता कि वो टाइम जो मैं शायरी में दे रहा हूं उसमें से टाइम निकालकर बीवी बच्चों को भी देना पड़ता है,
सही बात है,
वरना फिर वो अपनी जरूरत के लिए दूसरे रास्ते ढूंढता
है, सही बात है, सही बात है।
तो ये तंजो मिजा ने ये काम अंजाम दिया, कन्हैया लाल कपूर, कृष्णचंद्र, इब्राहिम जलीस, फिक्र तौंसवी, शौकत थानवी, ये लोग ऐसे थे कि जिन्होंने उर्दू अदब में तंजो मिजा की स्ट्रांग बहुत मजबूत रिवायतें कायम की। फिक्र तौंसवी का नाम तो बड़ा वाजे नाम है, कृष्णचंद्र भी मिजा में एक गधे की सरगुजिश्त उन्होंने लिखा कृष्णचंद्र के, और ऐसे बहुत सारे तंजो मिजा की उनकी तहरीरें हैं। कन्हैया लाल कपूर तो खालिस तौर पर मिजा निगार थे और तरक्की पसंद मिजा निगार थे, तो इसलिए उन्होंने जो पुराने फरसूदा घिसे पिटे रस्म और रिवाज थे उन पर अपने तंजो मिजा के हंसी हंसी में अपने बात कह दी,
कि
लोग हंस भी पड़े और समझ भी गए कि कहने वाला क्या क्या चाह रहा है। तो तरक्की पसंद तंजो मिजा, तरक्की पसंद तहरीक के दौर में तंजो मिजा अपना काम करता रहा, वो गोलियां बांटता रहा,
सही बात, सही बात।
और वो गोलियां दो तरह की काम, दो तरह का काम करती थी। जैसे हम देखते हैं कि कॉम्बी फ्लैम जो है उसमें दो कंटेंट होते हैं, एक होता है पैरासीटामोल और एक होता है कॉम्बी फ्लैम, एक जो है वो बुखार एंटी इन्फ्लेमेटरी है और दूसरा जो है पेन किलर है। तो ऐसे ही तंजो मिजा ने भी दो काम किए तरक्की पसंदी के दौर में, एक तो जो माशरती मसाइल थे उन पर भी चुटकियां ली,
सही बात,
और दूसरे लोगों को जो गम से बोझल थे, मसाइल से परेशान थे, उनको हंसा भी दिया, तो हंसाने का भी काम कर दिया और चुटकी लेने का भी काम कर दिया,
सही बात।
ये इस तरह से ये तंजो मिजा निकारों ने अपना किया।
तराजिम के बारे में आप क्या कहोगे कि किस तरह तरक्की पसंद तराजिम का डेवलपमेंट हुआ
जी,
और किस तरह से तराजिम में जो प्रमुख जिसने लिखी उनके क्या क्या उद्देश्य था?
देखिए, तरक्की पसंदों ने जो तराजिम किए तो तरक्की पसंदों के दौर में तरक्की पसंदों के सामने उनके सामने तो एक ही बात थी कि तराजिम अगर वो करें तो तराजिम मतलब तर्जमा मतलब ट्रांसलेशन, तो अब ट्रांसलेशन वो करेंगे काहे का, जाहिर सी बात है कि बाहर से आई हुई किताबों का, किन किताबों का, उन किताबों का जो उनके नजरिए को सपोर्ट करती थी,
सपोर्ट कर, सही बात
है ना। तो अब उनका नजरिया क्या था, उनका नजरिया था इश्तराकियत यानी कम्युनिज्म, तो कम्युनिज्म के जितने भी ख्यालात थे उन नजरियात को अपनी जुबान में लोगों के सामने पेश करना, तो अब यह हुआ कि उन्होंने ज्यादातर जो इंपोर्ट जिसको हम कहते हैं वो इंपोर्ट किया उन्होंने, तो तरक्की पसंदों ने ज्यादातर अदब जो इंपोर्ट किया और यहां लाकर उसको तर्जुमा किया उर्दू में हिंदी में, वो कहां से आया, वो आया रूस से। मिसाल के तौर पे इसमें जो तर्जुमा निगार थे उनका उनके मतलब कुछ काम सादात हसन मिंटू ने भी किया, उन्होंने भी तर्जुमा किया, उसके बाद अख्तर हुसैन रायपुरी ने किया, उसके बाद आपके महमूद जालंधरी ने किया, जोए अंसारी ने किया, उसके बाद कलीमुल्लाह और इस कबील के ये लोग थे जो तरक्की पसंद थे और ये कई जुबानों को जानते थे, उर्दू भी आती थी, फारसी भी आती थी, अरबी भी आती थी, हिंदी भी आती थी और अंग्रेजी भी आती थी, तो हर एक ने अपने अपना फिर वो उनके नजरियात की ताईद और हिमायत करने वाले वो चीजें जो वो नॉवेल्स या वो शायरी जो वहां से आ रही थी उसको उन्होंने तर्जमा करके यहाँ पेश किया। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि टॉल्स्टॉय, तो टॉल्स्टॉय के नॉवेल्स यहां लाकर तर्जमा किए गए, क्यों, किस टॉल्स्टॉय के नॉवेल्स में क्या था, माशरे के जिन लोगों का इस्तेसाल हो रहा था, सरमायादाराना तबका और गरीब तबका, ये दो जो क्लासेस पैदा हो गई थी, एक तो कैपिटलिस्ट और एक तबका जो हैव्स और एक तबका था कि हैव नॉट्स, तो ये दो तबके दो पैदा, तो वो वहां उनकी स्ट्रगल थी, वही स्ट्रगल यहां भी दिखाई दे रही थी,
सही।
तो जाहिर सी बात है कि फिर वो जब कंडीशंस सेम हैं, सर्कमस्टांसेस आर सेम, तो फिर उस सूरत में उधर से लाकर इन चीजों को यहां के देखो उन्होंने ये लिखा और उन्होंने ऐसे किया, तो वो नॉवेलों ने, वो शायरी, उस शायरी ने جذبے جگائے ترجموں کے ذریعے، پھر ناولس کے ترجمے ہوئے تو ناولس میں کیا حالات دکھائے گئے اور اس کے کیا راستے دکھائے گئے وہ یہاں ترجمے کے ذریعے ان کو بتایا گیا. اس طرح سے الگ الگ زبان، مطلب الگ الگ اصناف میں ترجمے کیے گئے.
سر کیا ڈائری اور مکاتیب یا رپورٹاز ان کا کچھ تعلق ہے اس ترقی پسند؟
دیکھیں رپورٹاج ہے، مکاتیب ہیں، ڈائری ہے. قاضی عبدالغفار کی ڈائری، لیلا کے خطوط اور مجنو کی ڈائری، یہ ان کے مشہور، اور وہ اس میں شامل بھی ہیں. سجاد زہر خود ہیں، کرشن چندر ہیں، ابراہیم جلیس ہیں، فکر تونسوی ہیں، عصمت چغتائی ہیں، سعادت حسن منٹو ہیں، یہ سب ہیں کہ جنہوں نے رپورٹاج بھی لکھے ہیں. رپورٹاج ہوتا کیا ہے؟ یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے رپورٹاج. یہ اصل میں کسی ایک واقعے کے بارے میں، کسی ایک ایونٹ کے بارے میں لکھنے والے کے اپنے تاثرات ہوتے ہیں، یہ کہلاتا ہے رپورٹاج. کہ وہاں یہ ہوا، اس میں وہ بہت زیادہ رپورٹاج میں اپنی تخلیقی جوہر اسکل نہیں دکھا سکتا، جو ہے جو ہوا وہ اپنے انداز دکھا سکتا ہے،
برابر
تخلیق نہیں دکھا سکتا، وہ ہوا یہ بتا دے گا. تو یہ لکھا گیا. اس کے بعد ڈائری، تو ڈائری کیا تھی؟ ڈائری جیسے مولانا ابوالکلام آزاد جیل میں تھے، وہاں سے ڈائری انہوں نے مینٹین کی، بہت سارے ان کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگوں نے ڈائریاں مینٹین کی اپنی. تو ڈائری کیا ہوتی ہے؟ ڈائری جو ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں روز نامچہ کہتے ہیں، وہ روز مرہ ڈیلی بیسس پر انسان کو کیا واقعات پیش آتے ہیں جو اس کی نظر میں اہم ہیں. آج راج درکر سر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، یہ میرے لیے اہم بات تھی، اس لیے میں نے ڈائری میں لکھ لیا، لیکن وہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہو گیا.
صحیح بات.
یہ تاریخ کو میں نے، یہاں میں سر نے میرا انٹرویو لیا، ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہو گیا. کہ اس میں بھی اب یہ جب بھی آگے ذکر آئے گا وہ اس کا حوالہ آئے گا. ڈائری یہ رول ادا کرتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈائری جو ہے یہ بتاتی ہے کہ اس کی پسند ناپسند کیا تھی.
صحیح بات.
اس کے رجحانات کیا تھے. مکاتیب جو ہے یہ لفظ بنا ہے مکتوبات.
مکتوبات کا کیا
مکتوب
مطلب؟
یعنی لیٹرز، مکتوب نگاری. تو ایک شخص ایک دوسرے شخص کو خط لکھ رہا ہے، تو وہ اس میں لٹریچر کہاں سے بن گیا؟ میں اگر میرے پتا جی کو خط لکھوں کہ پتا جی میں یہاں پر ناسک میں بہت اچھے سے پہنچ گیا اور سر کے سامنے بیٹھا ہوں اور یہاں بات کر رہا ہوں، اس سے کیا ہوا؟ یہ نہیں. اس وقت جو لوگ ایلیٹ کلاس تھا، وہ لوگ جب خط لکھتے تھے تو پرسنل باتیں کم لکھتے تھے، اور وہ باتیں جن کا سماج سے سروکار ہوتا تھا وہ اس میں آتا تھا.
صحیح. کر کے وہ امپورٹنٹ،
کر کے وہ امپورٹنٹ ہوتی تھی. جیسے آج بھی یہ آپ کے جانثار اختر، ان کا خط ان کی بیوی کے نام، صفیہ اختر کے، یعنی جاوید اختر کی ماں، اور مجاز جو ہیں وہ جاوید اختر کے ماموں تھے. مجاز لکھنوی، اسرار الحق مجاز، یہ جاوید اختر کے ماموں تھے. صفیہ اختر ان کی بہن تھی مجاز کی. یہ شاید ہمارے طالب و طلبہ کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ان کی یہ رشتہ داری ہے. تو انہوں نے، صفیہ اختر نے جو اپنے شوہر کو خطوط لکھے، وہ آج لٹریچر کا، ادب کا حصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک عورت کیا جذبات رکھتی ہے، اور دنیا، سماج، آدمی اپنا شوہر، اس کی طرف اپنے بچے، ان کی طرف دیکھنے کا اس کا نظریہ کیا تھا، وہ معلوم پڑتا ہے.
جیسے کہ اندرا گاندھی جی اور پنڈت نہرو جی کے بیچ کا جو پتر ہے،
جی
وہ بھی اس میں، ہم
وہ بھی اسی میں، بالکل اسی زمرے میں آتا ہے. صحیح ہے، صحیح.
سر ابھی میرا ایک سوال، ایک میرے ذہن میں آ گیا کہ شاعری، افسانہ، ناول، ڈرامہ، آپ کے نظر میں یہ ترقی پسند ادبی کا جو ذمہ داری ہے،
جی،
وہ اچھی طرح سے ان چاروں میں سے کس نے نبھائی ایسا لگتا ہے آپ کو؟ جیسے ڈرامہ ہے، شاعری ہے، افسانہ ہے، ڈائری ہے، چاروں میں سے ایسے کون سے एक नाम बताइए कि जिन्होंने ये तरक्की पसंद का ये जो जिम्मा है
जी जी
वो बहुत अच्छी तरह से उठाया और उसको निभाया भी, आपके विचार से।
जी 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 बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि इसमें, लेकिन आपने मुझे एक ऑप्शन दिया है, मैं आप दो ऑप्शन लेता हूं आपसे,
ठीक है।
इसलिए कि वाकईतन दो जो इसमें आपने कहा कि शायरी, अफसाना, ड्रामा, नॉवेल, डायरी वगैरह, इन सब में से कौन सा एक ऐसा ऐसी सिंफ है कि जिसने सबसे ज्यादा असर डाला हो? दो चीजों ने असर डाला है। जो तब्दीलियां आई हैं, फिक्री तब्दीलियां, नजरियाती तब्दीलियां, सोच की तब्दीली, वो तरक्की पसंद शायरी और तरक्की पसंद अफसाना।
अच्छा,
क्योंकि शायरी तो चलते फिरते की जुबान पर चढ़ जाने वाली चीज है।
सही बात है।
बताइए, मैं तो हैरान हूं, ये इसकी इंपॉर्टेंस देखिए आप कि शायरी, बहुत से लोग मैंने सुना है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भी शायरी अरे बेकार, बेकारी का काम है, शायरी बेकारी का मशगला है। शायरी बेकारी का मशगला नहीं है। मैं हैरत में पड़ गया कि वो बच्चे जो बिल्कुल समाज के बिल्कुल टूटा हुआ अंग, जिन्होंने कभी जिंदगी में स्कूल की सूरत नहीं देखी, नाक बह रही है और जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ते हुए घूम रहे हैं, जिनको अपनी जुबान धड़ से बोलनी नहीं आती, वो अंग्रेजी जुबान की नज़में गा रहे हैं, ये क्या है? जुबान तो आती नहीं, फिर ये क्या है? ये शायरी का कमाल है कि वो जुबान पर चढ़ जाती है। शायरी का दूसरा कमाल ये है कि आप बहुत बड़ी बात करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, मुख्तसर में आप बात कर दीजिए, एक शेर बोल दीजिए, बात खत्म हो गई,
बात खत्म हो जाएगी। सही बात है।
आई हयात लाई हयात आए, कजा ले चली चले, अपनी रजा आए ना अपनी रजा चले,
क्या बात है।
पूरी जिंदगी का फलसफा एक शेर में आ गया। पंडित बृज नारायण चकबस्त का एक शेर है कि जो पूरी जिंदगी के, आप ये पांच जो एलिमेंट्स होते हैं ना, हवा, पानी, जल, वायु, आकाश, ये तो उन्होंने पूरा उसको समेट दिया कि जिंदगी क्या है। अनासिर का जहूर तरतीब, अनासिर ये पांच एलिमेंट्स, जिंदगी क्या है, अनासिर का जहूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना,
क्या
ये एलिमेंट बिखर गए, मौत आ गई। एक इसमें, एक शेर में पूरी जिंदगी का फलसफा। और अगर आप किसी अध्यात्म गुरु के पास जाएं और जीवन का फलसफा पूछें तो चार घंटे, चार दिन, चार महीने, चार साल भी लग सकते हैं। फिलोसॉफी की अगर आप क्लास करें तो तीन साल का कोर्स भी आ सकता है ना। शायरी ये काम करती है, वही काम अफसाना किसी किसी को। अब अफसाने क्यों? कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको कहानी सुनना ज्यादा पसंद होता है।
सही बात
है। आप, मैं, हम सब लोग बचपन में बहुत छोटे जब थे तो उस वक्त अपने दादा दादी, नाना नानी या घर में जो भी होती थी तो उनको बोलते थे कि सोते वक्त कि कहानी सुनाओ, तो सोते, नहीं तो नहीं सोते,
नहीं सोते।
तो ये कहानी से हमारा जो अफसानों का दिलचस्पी डेवलप हुई वो कहानियों से हुई। कहानी सुनना हर एक को पसंद, फिर बड़े हुए तो दिलचस्पियां बढ़ जाती, लेकिन जो इनको जौक रहता है तो वो अफसाने पसंद करते हैं। तो अफसाने में वो अपने, वो जो अफसाने का एक कैरेक्टर किरदार होता है वहां मैं अपने आप को रखता हूं।
बराबर।
जो अच्छा कैरेक्टर है, जिसकी जैसी मेंटेलिटी है, वो उस कैरेक्टर को, अपनी कैरेक्टर को वहां रखता है। अगर एक आध गुंडे का कैरेक्टर हो, किसी को विलन बनना पसंद है, अमरीश पुरी बनना चाहता है, तो फिर वो वहां अपने आप को रख देगा कि मैं ऐसा ऐसा सताऊंगा, ऐसा करूंगा। लेकिन ज्यादातर, मतलब हर कोई ये सोचता है कि इसमें जो हीरो या सुपर हीरो है वो मैं हूं, जेम्स बॉन्ड मैं हूं। तो ये अफसाने, इतनी शायरी और अफसाना, ये तरक्की पसंद तहरीक के दो बड़े हथियार थे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको तरक्की पसंद विचार समाज को देने हैं
जी,
तो आपको इस तरह का फॉर्म चुनना पड़ेगा कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिल के करीब है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत अच्छा विचार दिया लेकिन नॉवेल के जरिए अगर वो लोगों के करीब नहीं है ये फॉर्म, तो वो लोगों तक तो पहुंच नहीं पाएगा। तो बहुत आपने अच्छा कहा कि शायरी और अफसाना ये आज ही बहुत बड़े मायने रखते उर्दू साहित्य में। तो मित्रों, अभी आपने देखा कि आकिब सर ने हमको जो जानकारी दी, तरक्की पसंद जो विचार है वो किस फॉर्म में, किस तरह से शायरी के जरिए या नॉवेल के जरिए या अफसाने के जरिए आपके सामने रखा गया है, और जैसे कि मैंने उनसे पूछा कि इसमें ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, तो उन्होंने यही कहा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के करीब है, जिसमें शायरी है और अफसाने हैं। तो सर आज हम आपने हमको ये बहुत बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसलिए मैं आपका हमारे विद्यार्थियों की ओर से, मेरे ओर से और विद्यापीठ की तरफ से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि अपनी बातें और हो इसके बारे में, ताकि हमारे विद्यार्थियों का भी इसमें लाभ हो। धन्यवाद।